नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 संसदीय सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे। पापुआ निगिनी के दूर दराज के हिस्से में भूस्खलन में अब तक 100 लोग मारे गए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना जताई है। तीरंदाजी में भारतीय कंपाउंड मिश्रित टीम दक्षिण कोरिया के येचियोन में विश्व कप के दूसरे चरण के फाइनल में पहुंच गई है। और आज शाम चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। 6वें चरण में राजनीतिक गलियारे के कई प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज हैं। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों पर छाया, पीने के पानी, रैंप, शौचालय, व्हीलचेयर से लेकर बिजली तक की बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों सहित प्रत्येक मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सकें। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय करने की सलाह दी गई है। मतदान क्षेत्रों में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में कल मतदान होगा। लोकसभा की 7 सीटों के लिए 162 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और कांग्रेस के जेपी अग्रवाल शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुगम प्रक्रिया से मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
कल दिल्ली में 1,52,00,000 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें लगभग 82,00,000 पुरुष और 70,00,000 महिला मतदाता हैं। मतदान शहर की सभी 7 लोकसभा सीट पर होगा। इसके लिए 13,637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 70 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, जिनका प्रबंधन पूरी तरह से महिला मतदान कर्मी करेंगी। पहली बार प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र ऐसा भी होगा जो पूरी तरह से दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होगा। मतदान केंद्रों पर गर्मी से बचाव की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें घर तक निशुल्क यात्रा के लिए बाइक और टैक्सी एग्रीगेटर्स के साथ साझेदारी की है। साथ ही फूड एग्रीगेटर्स को भी जोड़ा है, जो वोट करने वाले लोगों को अपनी उंगली पर स्याही निशान दिखाने पर विशेष कूपन देंगे। इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लगभग 100 रेस्तरा को भी जोड़ा है, जो मतदान करने वालों को 5 से 50% तक की छूट देंगे। इस बीच मतदान के दिन कल मेट्रो ट्रेन और दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। दिल्ली परिवहन निगम कल मतदाताओं की सुविधा के लिए 35 अतिरिक्त सड़क मार्गों पर भी बसों का संचालन करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से आनंद कुमार के साथ मैं दुर्गेश भदौरिया।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रिपोर्ट हमारे संवाददाता से।
पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जिला सीमाएं सील कर दी गई हैं और सुरक्षाकर्मी हर बैरियर पर जांच कर रहे हैं। नेपाल के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले तराई इलाके के जिलों में विशेष निगरानी रखी गई है। सशस्त्र सीमा बल सीमावर्ती जिलों में चेकिंग कर रहे हैं। जो राजनीतिक कार्यकर्ता निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें तुरंत ये क्षेत्र छोड़ देने का निर्देश दिया जा चुका है। 6वें चरण संक्रमण की 14 सीटें पूर्वांचल और तराई इलाकों में फैली हुई हैं, जिनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने देश के पर्वतीय और सीमावर्ती राज्यों में व्यापक विकास किया और इन क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया। शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के समर्थन में नाहन में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में देश की सेना और मजबूत हुई। आज भारत दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो आरक्षित श्रेणियों को दिया गया आरक्षण समाप्त करना चाहती है और धर्म के आधार पर आरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया और उनकी लंबे समय से जारी मांग पूरी की।
60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं, उनकी परवाह ही नहीं थी, उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था। मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है।
प्रधानमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वो लोगों को झूठी गारंटी का झांसा देकर सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को 1,500 रूपये की पेंशन और बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी देने में असफल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को अनेक पैकेज का उपहार दिया और हिमाचल के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री मोदी ने दावा किया कि भाजपा ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी दी है, जिससे हिमाचल की भी हजारों महिलाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी और वो अतिरिक्त बिजली बनाकर अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार हर दिन के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में आज 2 रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जालंधर संसदीय सीट के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में एक रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी आज पंजाब जाएंगी। वो नवा शहर में दोपहर को चुनावी रैली करेंगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब की मालवा पट्टी में पड़ने वाली बठिंडा संसदीय सीट की। एक रिपोर्ट।
हरियाणा और राजस्थान के साथ सटा बठिंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कुल 9 शहरी और ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित है। मौजूदा सांसद हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार हैं, जो कि लगातार अपनी चौथी जीत के लिए लोगों को रिझाने में लगी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया अपने प्रचार अभियान को 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनाकर धार दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू और बहुजन समाज पार्टी के निक्का सिंह के अलावा शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के लखवीर सिंह लखा सिधाना भी दिन रात एक किए हुए हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम।
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
ये आकाशवाणी है। पापुआ न्यू गिनी के दूर दराज क्षेत्र में आज भूस्खलन के कारण 100 लोग मारे गए। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने बताया कि भूस्खलन की घटना इंगा प्रांत के काओ कोलम गांव में हुई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में बसा द्वीपीय देश है। 1 करोड़ की आबादी वाला यह ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला दक्षिण प्रशांत राष्ट्र है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में औद्योगिक क्षेत्र डोंबिवली में हुए एक विस्फोट में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 56 लोग घायल हैं। यह घटना कल हुई जब एक केमिकल कंपनी के बॉयलर में विस्फोट के बाद आग लग गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विस्फोट के पीड़ितों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत बड़ी तेजी से बदल रहा है और अगले 10 वर्ष में यह 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री डोभाल ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 21वें अलंकरण समारोह को संबोधित किया और रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान दिया।
We will be a 10 trillion economy. That's a very, very major the achievement and the world's third largest economy. It will also have the world's largest workforce. Technically, it will be one of the most advanced countries in many fields like semiconductors, artificial intelligence, quantum computing, high technologies, and various other areas of defense, security, manufacturing and others. And we will become a hub of that. It will also be
मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनमणि ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा है कि इन क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है।
नहीं देखिए, हीट वेव का जो वार्निंग है, अभी कोई रेन का संभावना नहीं है। तो अगर हम जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मेनली हमारा जो सी इलाका है और उसी के साथ साथ हमारा जो गुजरात है, तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है, जिसके वजह से यहाँ का जो हीट वेव है और सीवियर हीट वेव मेनली राजस्थान का जो 48 डिग्री है और उसका सटा हुआ जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, वहाँ 44 से 48 रहेगा। जहाँ दिल्ली का बात है, यहाँ हीटवेव नहीं है।
भारत की ज्योति सुरेखा वेंडम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे राउंड में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने कड़े सेमीफाइनल में मेजबान देश दक्षिण कोरिया की हान सेउंग योन और यांग जेवॉन की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में दूसरा पदक पक्का कर लिया। अब ज्योति और प्रियांश की जोड़ी का सामना कल अमरीका की ओलिविया डीन और सायर सुलिवान से होगा। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 मैच हुए हैं, जिनमें से सनराइजर्स ने 10 और राजस्थान ने 9 मैच जीते हैं। टूर्नामेंट के फाइनल में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 संसदीय सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे। पापुआ न्यू गिनी के दूरदराज के हिस्से में भूस्खलन में अब तक 100 लोग मारे गए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना जताई है। तीरंदाजी में भारतीय कंपाउंड मिश्रित टीम दक्षिण कोरिया के येचिवान में विश्व कप के दूसरे चरण के फाइनल में पहुंच गई है। और आज शाम चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।